बात शुरू हो जाती है तो अखलाक के नबी पे चलते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का एक नया ही रूप लोगों को दिख रहा है। आप जैसे लोग जो क्लासेस में आते जाते हैं उनको तो बहुत कुछ पता होगा, जिन्होंने दसियों बार सीरा पढ़ी उनको भी पता होगा। और ये बात मैं अपने सारे सबीलुल जन्ना और एनन वाले स्टूडेंट्स को सोच के कह रही हूँ, क्योंकि आपको क्लासेस में सीरा मस्ट है पढ़ाई जानी, लेकिन आम लोगों ने अल्लाह के नबी का ये रूप नहीं देखा होता। ज्यादा से ज्यादा भी कोई तसव्वुर करे ना अल्लाह के नबी का, तो क्या आता है, मुस्कुराते रहते थे, लोग कुछ भी कहते आगे से हंसते रहते थे, हाथ में एक बड़ी सी तस्वीर थी दानों की, सर पे एक बड़ी सी पगड़ी थी, चोगा था, कोई कहता सब्ज पहनते थे, कोई कहते हैं काला पहनते थे, कोई कहता नहीं नहीं सब्ज हरा पहनते थे, कोई कहता नहीं जी वाइट पहनते थे, और लंबी सी दाढ़ी थी सफेद। हालांकि मेरे नबी बिल्कुल ऐसे नहीं थे, कुछ चीज़ें ठीक हैं कुछ नहीं। और ज़हन में नबी का तसव्वुर क्या आता है, वही जो आज गद्दी नशीनी का है, कहीं गद्दी लगी हुई और आप बैठे हैं और मुरीद आ रहे हैं और आप उनको कोई वजीफे बता रहे हैं, पानी दम करके दे रहे हैं, कहीं अल्लाह के नबी आ रहे हैं तो लोगों को रिश्ते कराने के तरीके बता रहे हैं। यहाँ लिखिए आज के पारे की नज़र, ये बात लिख लीजिए कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, ये जो अब मोहम्मद अरबी का जो दौर पढ़ रहे हैं, तूफानी कशमकश है, ये किस चीज़ की थी, क्या बीच में डिफरेंस था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को कोहे सफा पे खड़े होकर ये कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून की बजाय क्या कहते, लोगों मेरे पास एक कलाम आया है उसको पढ़ो ना तो महल तैयार हो जाएंगे तुम्हारे जन्नत में, और तुम्हें पता है एक ऐसी आयत आज मेरे ऊपर उतरी है इसको 100 दफ़ा पढ़ो तो तुम्हारी बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। आज तो मेरे ऊपर जो आयत उतरी है अगर इसको एक टांग पे खड़े होकर 200 बार पढ़ लो तो तुम अपने शहर के अमीर तरीन शख्स बन जाओगे। कोई मुखालफत होती नहीं होती। लोगों ने नबी के सामने पानी की बोतलें रख देनी थी कि एक फूक इधर भी मार दे। आज भी लोगों को ये दीन बड़ा अच्छा लगता है, वजीफों वाला, फूके मारने मरवाने वाला, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुद आराम से बैठे और ना किसी को आराम से बैठने दिया, ना बैठेंगे ना बैठने देंगे, क्योंकि लिव एंड लेट टू लिव, जी और जीने दो, और किधर जियो, आखिरत के लिए जियो। अल्लाह के नबी ने अपने प्यारे असहाब को आखिरत के लिए जीना सिखाया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नरम हाथों से किया था। देखिए एक डॉक्टर जब दिल का ऑपरेशन करता है, अल्लाह सबको सेहत दे और जिनके हो चुके हैं उनको अल्लाह सेहत और आफियत वाली ज़िंदगियां भी दे, लेकिन बड़ी एहतियात से करता है, बारीक टिश्यूज़ होते हैं, बाज़ दफ़ा उंगलियों के आगे भी वो कोई बारीक चीज़ें पहन लेते हैं कि वहाँ तक उंगली नहीं जा सकती। और आज तो वेस्ट में रोबोट के साथ ऑपरेशन होते हैं, ब्रेन का ऑपरेशन रोबोट करता है, वो और भी इजीली कह लीजिए कि चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। अच्छा अब क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिसाल को समझिए। एक होता है कि आपने अपनी देगची जो जल गई है उसमें रखा हुआ खाना भी उसमें चिपक गया, उसको धोना है, कैसे धोते हैं, कैसे साफ करेंगे, खुरचेंगे ना, स्टील वूल लाएंगे, कोई विम लाएगा, जो भी जो चीज़ें अवेलेबल होती रही हैं उसको लेकर आएंगे और उसको खूब सख्त हाथों से रगड़ेंगे, वो साफ हो जाएगी, चमक जाएगी एक दिन। दूसरा काम, जिस्म पे कोई जख्म है उसको डॉक्टर साफ करता है तो हाथ पे अपने देखे रुई लगा लेता है कि कहीं जख्म को ज़रा सा टच करने से सेप्टिक ना हो जाए या दर्द ना हो। लिखिए ये काम कि क्या चीज़ नरम हाथों से करनी है और क्या चीज़ सख्त हाथों से करनी है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता था। जहाँ नरमी की ज़रूरत थी आपसे नरम कोई नहीं था, और जहाँ सख्ती की ज़रूरत थी आपसे ज़्यादा सख्त कोई नहीं था। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान में आप पढ़ चुके हैं, फबिमा रहमत मिन अल्लाह लिन्त लहु, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है जिसकी वजह से आप बड़े नरम हैं इनके लिए। और अगर आप गलीज़ अल कल्ब और बद जुबान और बद अखलाक होते तो आपके इर्द गिर्द ये भीड़ ही ना होती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, आज का टॉपिक लिखिए, मैंने इनसे बेहतर मुअल्लिम नहीं देखा अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम मैंने इनसे बेहतर मुअल्लिम नहीं देखा, क्योंकि आज के पूरे पारे में सहाबा एज अ स्टूडेंट्स, एज अ फॉलोअर्स, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ उस्ताद, मुरब्बी, मुज़क्की थे। सही मुस्लिम की एक हदीस है, इन अल्लाह रफ़ीक़न जो हिब्बुर रिफ़्क़ व युती अल रिफ़्क़ी मा ला युती अल उन्फ़ व मा ला युती अल मा सिवा। बेशक अल्लाह नरमी करने वाला है, वो नरमी को महबूब रखता है। नरमी पर वो कुछ अता करता है जो सख्ती और इस जैसी दूसरी चीज़ों पर अता नहीं करता। अपने ऊपर लीजिए, माँ हैं, बहन हैं, बीवी हैं, या कोई और आपसे अल्लाह दीन का काम ले रहा है, नरमी नरमी और नरमी खैर लाती है नरमी। सही मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन रिफ़्क़ ला यकून फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युन्ज़ौ मिन शैइन इल्ला शानहु। बिला शुबा नरमी जिस चीज़ में भी हो इसे खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ में नरमी ना रहे वह ऐबदार हो जाती है। तो क्या पता चला, जिन उमूर में या जिस चीज़ में भी नरमी हो वो इसे खुशनुमा, खूबसूरत और वज़नी बना देती है, और जिस चीज़ में नरमी ना हो वो इसे ऐबदार कर देती है। जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि आपने हमेशा अपने साथियों को नरमी सिखाई। अल्लाह के नबी के मामले में जो कॉन्सेप्ट है वो रॉन्ग है। आपकी सीरत से हमें ये सबक मिलता है कि आपने अपने साथियों को हमेशा आसान और नरम सलूक करने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, मुआविया बिन हकम अल असलमी रदी अल्लाह अन्हु। एक मरतबा ये मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लाह के रसूल की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के दौरान एक शख्स को छींक आई तो उन्होंने यरहमुकल्लाह कह दिया, अल्लाह तुम पर रहम करे। आपको तो ये कि मुसलमान के हकूक में से एक हक है कि जब छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहेगा, फिर छींकने वाला कहेगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ये सही बुखारी की 6224 रिवायत में मौजूद है। इन्होंने बिल्कुल वही किया, मगर नमाज की हालत में छींक मारने वाला ऊंची आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, खुफिया तौर पे कहना होता है। जब बोला ही नहीं तो बाकी लोग जवाब देंगे ही नहीं, समझ आ गई? यानी अगर आप में से किसी को इस हॉल में बैठे हुए छींक आए और मेरे कानों तक आपका अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचेगा, फिर मैं आपको यरहमुकल्लाह कहूंगी। अगर मेरे तक नहीं पहुंचा तो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। नमाज में खुफिया तौर पर होता है और बाकी खामोश रहे, ये नमाज का अदब है। हजरत मुआविया को ये मसला मालूम नहीं था कि हालत नमाज में छींक का जवाब नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने यरहमुकल्लाह कह दिया। इधर सहाबा किराम मुआविया को कनखियों से देखना शुरू हो गए। एक तो ये भी बड़ा मसला है ना, उस्ताद कुछ गए ना गए जो साथ वाले हैं वो कोनिया मारने लग जाते हैं और घूरने लग जाते हैं। खैर, हजरत मुआविया ने इनसे ऊंची आवाज में कहा, वसुल उम्मिया हो, ओ हाय मेरी माँ मुझे गुम कर दे, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब देखिए बात बढ़ गई ना, पहले तो बेचारे ने यार हम गल्ला का, अब जब घूरने लगे तो वो बोल पड़े कि अरबों का एक मुहावरा था, तेरी माँ तुझे गुम करे, जैसे हमारे कल्चर में कहते हैं ना, तेरा बेड़ा तर जाए। अब जो बद दुआ तो नहीं है ना, तुम्हारी कश्ती तैरने लगे दुआ है, लेकिन अमूमन उस वक्त दी जाती है जब कोई ज़रा सा नाजेबा काम कर दे, तो ये लोग ये जुमला बोला करते थे। अच्छा, अब क्या हुआ, सहाबा ने देखा पहले ये यरहमुकल्लाह कह रहे थे, अब ये और बोलने शुरू हो गए। तो जब उन्होंने देखा मुआविया नमाज में ही बोलने शुरू हो गए, तो उन्होंने अपने हाथों को जोर से ऐसे, ये हुक्म भी है, ऐसे अपनी रानों पे मारना शुरू कर दिया। यानी किसी को नमाज में कुछ चीज बतानी हो, कोई वार्न करना ना, तो मतलब इस तरह से हाथ मारते हैं। अब इधर जब मुआविया ने देखा रदी अल्लाह अन्हु कि उन्होंने मुझे खामोश कराना चाहा है, तो खामोश हो गए, इसके बाद आगे नहीं बोले। खैर, नमाज खत्म हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आइए जरा मुआविया की जुबान से सुनिए। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, फबी अबी हुआ व उम्मी, मेरे माँ बाप अल्लाह के रसूल पर कुर्बान हो, मा रई तो मुअल्लिमन कबलहु वला बादहु अहसना तालीमन मिन्हु। इनसे बढ़कर खूबसूरत तरीके से समझाने वाला मुअल्लिम मैंने इनसे पहले और इनके बाद कभी नहीं देखा। ज़रा अल्फाज पर गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल के अखलाक की अजमत का तसव्वुर कीजिए। माविया कहते हैं, फवल्लाही मा कहरनी वला दरबनी वला शतमनी, अल्लाह की कसम आप ना तो मुझसे नाराज हुए, ना मुझे जिस्मानी सजा दी और ना ही मुझे बुरा भला कहा, यानी गाली भी नहीं दी, कुछ नहीं कहा मुझे, बल्कि इरशाद फरमाया, इन्ना हाजिहि सलाता ला यसलुहु फीहा शैयुम मिन कलाम इन्नास, बेटा इन नमाजों में लोगों के लिए गुफ्तगू करना जायज़ नहीं। इन्नमा हुआ अत-तस्बीहु व तकबीरु व क़िरातुल कुरान, इनमें तो सिर्फ तस्बीहो तकबीर और कुरान करीम की तिलावत की जाती है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 537। तो ज़रा सा गौर कीजिए, थोड़ी सी अपने अंदर बेहतरी लाइए। अब एक माँ है तो आप भी मौलिम है, माँ से बड़ी मौलिमा कौन होगी? और इसी तरह हर रिश्ते में, और अगर अल्लाह ने वाकई आपको इल्म के मैदान में चुना है, चाहे आप दुनिया की किसी सब्जेक्ट की टीचर हैं, मैथ पढ़ाती, साइंस पढ़ाती, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, या फिर आप कुरान पढ़ाते हैं, तो अल्लाह के रसूल किस मोहब्बत और प्यार से अपने साथी को नमाज के आदाब सिखा रहे हैं। और माविया कितने खुश हैं कि अल्लाह के नबी ना तो मेरे से नाराज़ हुए, ना बुरा भला कहा, ना मुझे मारा। बिलाशुबा एक कायद, एक रहनुमा अपनी रईयत के साथ हमेशा नरमी का सलूक करता है, और यही वजह है कि सहाबा कराम भी अल्लाह के रसूल से बेहद मोहब्बत करते थे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपसे भी मोहब्बत की जाए, तो इस असूल को सामने रखें। लेकिन ये नरमी किधर थी? जहाँ ज़रूरत थी। एक ज़रा सा कोई रूल तोड़ता, डिसिप्लिन का ख्याल ना रखता, जैसे फतह मक्का, आज के पारे में इन्ना फतहना सूरह फतह आएगी, आप देख लीजिएगा खुद ही, सिर्फ एक रूल ब्रेक करने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया ब्रेक कर दी थी। फिर अबू सुफियान ने आके मिन्नतें की, फलां आया, मोहम्मद इस दफ़ा माफ़ कर दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कभी डिसिप्लिन में कमी बर्दाश्त नहीं करते थे, आप ये नहीं बर्दाश्त करते थे कुरान भी चल रहा और लोग बातें भी कर रहे हो, या चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हों, या कोई जिसका अपना जिम्मा है वो खुद ही पीछे देर से आ रहा हो, या उठ के चला गया, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये बातें अल्लाह के नबी नहीं बर्दाश्त करते थे, क्योंकि इसका असर पड़ता था काम पे। तो लिखिए, अच्छा लीडर वो होता है जो काम पे नज़र रखता है, जिस चीज़ से, जिस आदत से कुरान पे कोई कमी का एहसास हो, हक उसका ना दिया जा सके, उस पे गवारा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका तो लाड दिखा ना, आपको तो वो बात छोटी लगी, लेकिन कितनों का उस पे नुकसान हुआ, ये सोचने की बात है।